नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति निशान अलंकरण से सम्मानित किया। माओवादियों से हथियार डालकर मुख्यधारा से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र में नवगठित सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज नागपुर में किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तेज शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया और ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ 3रे क्रिकेट टेस्ट के 2रे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 7 विकेट पर 405 रन बनाए। दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन की आज 2रे दिन भी अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 दिन का ये सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ था। श्री मोदी आज सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में एक साझा विकास एजेंडा तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के अलावा राज्यों के साथ भागीदारी की रूपरेखा तय करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भागीदारी को और अधिक मजबूत करना तथा सहकारी संघवाद को बढ़ाने के साथ तेजी से वृद्धि और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना भी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य की सराहना की। संविधान के 75 वर्ष की इस यात्रा पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत कल श्री नड्डा करेंगे। इसके लिए 16 और 17 दिसंबर का समय निर्धारित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने माओवादियों से हथियार डालने और समाज के मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है। रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान करने के एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के केंद्र सरकार के संकल्प को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी वीरता और समर्पण के साथ नक्सल रोधी अभियान चला रही है।
छत्तीसगढ़ पुलिस कभी भी दोयम स्थान पर नहीं रही है, हमेशा अग्रम स्थान पर रही है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं आज फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपने विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए।
गृहमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत ही अच्छी समर्पण नीति तैयार की है और समर्पण करने वाले माओवादियों को अच्छा पैकेज मिलेगा। श्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रदान किया गया राष्ट्रपति का निशान राज्य पुलिस की सेवा, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ये केवल एक अलंकरण नहीं है बल्कि एक दायित्व है।
मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है कि राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में आज मुझे अपने हाथों से छत्तीसगढ़ जैसी जांबाज पुलिस को राष्ट्रपति निशान का अलंकरण करने का मौका मिला है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस की कई टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भी भाग लेंगे। वे समर्पण करने वाले माओवादियों से बातचीत भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का व्यक्तित्व और उनके कार्य देश की एकता और अखंडता तथा विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने में देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के लौह पुरुष का स्मरण करते हुए गृहमंत्री ने उन्हें देश की एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति उनकी वचनबद्धता ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की मजबूत नींव रखी। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने वाले सरदार पटेल का महान व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण का उनका संकल्प देशवासियों का हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। बंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में वहां की पुलिस ने आज अतुल की पत्नी को गुरुग्राम से और उसकी मां तथा भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर अतुल को आत्महत्या के लिए उकसाने, कथित तौर पर उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस देने के लिए 3 करोड़ रुपए मांगने और बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए की मांग रखने का मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को बंगलुरु में अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। अतुल को 9 दिसंबर को बंगलुरु के उनके अपार्टमेंट में मृत पाया गया था। उन्होंने 40 पृष्ठ का सुसाइड नोट लिखा था और वीडियो बनाई थी। इसमें अतुल ने अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र में नवगठित सरकार के मंत्रिमंडल का आज नागपुर में विस्तार किया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं अजित पवार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सत्तारूढ़ महायुति सरकार का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम राज्य की उपराजधानी नागपुर के राजभवन परिसर में होने वाला है, जो एक सप्ताह तक चलने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र के ठीक पहले होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन कल से नागपुर में शुरू होगा। धनंजय वानखेड़े के साथ नम्रता फलके, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एक तपेदिक जागरूकता मैत्री क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। इसमें कई राजनीतिक दलों के सांसद भाग ले रहे हैं। इस मैच का उद्देश्य तपेदिक के प्रति जागरूकता बढ़ाना और तपेदिक मुक्त भारत को सहयोग प्रदान करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्रिकेट मैच के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर लोकसभा स्पीकर 11 का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू राज्यसभा चेयरमैन 11 कप्तान हैं। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
इस संकल्प के साथ कि 2025 तक हमें टीबी मुक्त भारत बनाना है, इस खेल कराने का मकसद यही है कि जिस तरीके से खेल में प्रतिस्पर्धा होती है अपने अपने खेल के तो जीतने की, उसी तरीके की प्रतिस्पर्धा है अपने अपने संसदीय क्षेत्र को टीवी मुक्त रखने का, और ये प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मैच के माध्यम से न सिर्फ इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी बल्कि लोगों के बीच शारीरिक स्वस्थता का महत्व भी बढ़ेगा।
टीबी मुक्त भारत को लेकर के अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आज क्रिकेट मैच रखा गया है लोकसभा राज्यसभा के बीच में, और कई हमारे सांसद साथी यहाँ आए हुए हैं। हम फिट रहेंगे तो देश फिट रहेंगे, और टीबी मुक्त भारत को आगे ले जाने के लिए हम खेल के माध्यम से एक जोश दिलाने के लिए ये कार्यक्रम रखा है।
मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश और पंजाब में आज शीतलहर जारी रह सकती है।
मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में शीतलहर होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अगले 2 दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान है। विभाग ने अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग क्षेत्रों में रात और सुबह के समय घना कोहरा हो सकता है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी रात और सुबह के समय धुंध बनी रहने की संभावना है। विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश और कल तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल में गरज के साथ तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में आज दोपहर बाद 1 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 270 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले 2 दिन के दौरान सुबह और रात के समय धुंध का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मोल्डोवा के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मिहाइल पोपसोई भारत की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि श्री पोपसोई की यात्रा से भारत मोल्डोवा के बीच संबंध मजबूत होंगे और दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के 3 दिन की यात्रा पर आज भारत आएंगे। श्रीलंका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद श्री दिसानायके की भारत की ये पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री दिसानायके नई दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने से संबंधित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे बिहार में बोधगया भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री दिसानायके की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय और आपसी सहयोग मजबूत होगा। सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने भारत यात्रा पर आए नेपाल के सेना प्रमुख सुप्रबल जनसेवा श्री जनरल अशोक के साथ सकारात्मक बातचीत की है। उनकी 3 दिन की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना और संबंधों को मजबूत करना शामिल है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक का लगभग 1,41,000 करोड़ रुपए का सबसे अधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया है। इस दौरान सकल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का अनुपात घटा है। इस वर्ष सितंबर में ये अनुपात 3.12% दर्ज किया गया। मार्च 2018 में ये अनुपात 14.58% था। हरियाणा के हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की अखिल भारतीय समेकित कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत विकसित 1 हेक्टेयर की समेकित कृषि प्रणाली मॉडल को राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति BR काम्बोज ने बताया कि इस मॉडल से किसान विभिन्न फसलों, सब्जियों और फलों की खेती के साथ केचुए से बनी खाद के उत्पादन, मशरूम की खेती और बायोगैस के उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियां कर सकते हैं। ब्रिटेन आज प्रशांत पार व्यापक तथा प्रगतिशील भागीदारी CPTPP समझौते में शामिल हो गया। वो इस समझौते में शामिल होने वाला 12वां और यूरोप का पहला देश बन गया है। इस समझौते में कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम शामिल हैं। ब्रिस्बेन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 3रे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 7 विकेट पर 405 रन बना लिए थे। इस पारी में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच 4थे विकेट के लिए 241 रन की महत्वपूर्ण भागीदारी हुई। ट्रेविस हेड ने श्रृंखला में लगातार दूसरा शतक बनाया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। दोनों देशों के बीच 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति निशान अलंकरण से सम्मानित किया। माओवादियों से हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र में नवगठित सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज नागपुर में किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तेज शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।